माना की फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में थी इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। आदित्य जानता था कि माना केवल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, वो हर बात का सबूत मांगेगी और बिना ठोस बातों के वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। अब जब उसके पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे थे तो शायद सच्चाई जानने का उसके मन पर पहले जितना असर नहीं होगा। इसी सोच के साथ आदित्य ने सारी बातें साफ साफ बताने का फैसला कर लिया। तो सुनो माना, मैंने तुम्हारे पापा को क्या बताने से रोका था, आज सब कुछ बता देता हूँ। मुझे पता है जब तक तुम सच नहीं जानोगी तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए शक पैदा हो गया है कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन अब पूरी सच्चाई सुनो, बिना टोके बिना बीच में बोले। तुम जानती हो तुम्हारे पापा की एक दवाइयों की फैक्ट्री है जिसमें कई गंभीर बीमारियों के इलाज की दवाएं बनाई जाती हैं। मुझे पता है कि पापा की दवा की फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग बीमारियों की दवाएं बनती हैं, मनाल बीच में बोल पड़ी। आदित्य ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। बीच में मत बोलो माना, मैंने कहा ना, पूरी बात सुनो फिर जो कहना हो कह देना, तुम्हारा हर वाक्य में बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। देखो, फैक्ट्री में जो दवाएं बनती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सरकार की मंजूरी से मिलता है। कुछ रसायन खास होते हैं जो केवल लाइसेंस के जरिए ही मिल सकते हैं। ये वही रसायन हैं जिनका इस्तेमाल दिल की बीमारियों और मानसिक रोगों के इलाज में होता है, लेकिन यही रसायन कुछ गलत हाथों में जाएं तो उनका उपयोग नशे की दवाएं बनाने में भी किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे रसायन पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। तुम्हारे पापा की फैक्ट्री से जो माल मिलता था उस पर कुछ गलत लोगों की नज़र पड़ गई थी। ये लोग ड्रग्स का अवैध कारोबार करते थे, उन्हें तुम्हारे पापा की फैक्ट्री से मिलने वाला रॉ मटेरियल चाहिए था। बाजार से वो उन्हें महंगे दाम पर मिलता या फिर आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। उन्होंने तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। शुरू में उन लोगों ने थोड़ी बहुत चोरी छिपे सप्लाई निकाली भी, लेकिन उनके लिए ये नाकाफी था। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पापा को भी अपने साथ शामिल कर लिया जाए। उन्होंने तुम्हारे पापा को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया और साफ कहा कि यदि वो उनके साथ मिल जाएं तो उन्हें अरबों का फायदा होगा। लेकिन महेश जी एक ईमानदार और सच्चे इंसान थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। बस वहीं से मुश्किलों की शुरुआत हो गई। तुम लोगों का बुरा समय वहीं से शुरू हुआ। उन लोगों का जो लीडर था उसकी नज़र तुम पर भी पड़ गई। उसी समय तुमने फैक्ट्री जाना शुरू किया था और वो आदमी तुमसे आकर्षित हो गया। अब वे लोग तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के साथ साथ तुम्हें भी पाना चाहते थे। उसने खुले तौर पर कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। उन्होंने तुम्हारे पापा को दोबारा बुलाकर मीटिंग की और इस बार उन्होंने फैक्ट्री खरीदने की पेशकश के साथ साथ तुम्हारा रिश्ता भी मांगा। तुम्हारे पापा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने साफ मना किया और पुलिस में जाने की धमकी दी। जैसे ही वो मीटिंग से निकले वे लोग उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने प्लान बनाकर तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवा दिया। उनका इरादा था कि महेश जी के हटने के बाद वे तुम्हें मजबूर करेंगे शादी करने को और फिर फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन मेरे पास तो पापा के एक्सीडेंट के बाद ऐसा कोई ऑफर नहीं आया, मनाल ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि इस बार वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था एक मजबूत लड़की को तोड़ना आसान नहीं होता, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू किया। तुम सोचती हो जिनसे तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी तय करना चाहते थे वे लोग अचानक पीछे क्यों हट गए? उन लोगों ने तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों को धमकाया था। कहा गया कि यदि उन्होंने महेश खन्ना की बेटी से रिश्ता रखा तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। डर के मारे वे लोग चुपचाप हट गए और तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया, मनाल की आवाज़ टूटी। उसके बाद उन्होंने तुम्हें तंग करने की पूरी योजना बनाई। फैक्ट्री के मजदूरों को भड़काया गया, वफादार कर्मचारियों को डराकर निकाल दिया गया, हर काम में रुकावटें आने लगीं। तुम्हारे चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया गया कि तुम थक जाओ, हार मान लो और फिर जब तुम पूरी तरह टूट जाओ तो वे तुम्हारे सामने मददगार बनकर आए। वो चाहते थे कि तुम मजबूरी में उनसे शादी करो और तुम्हारी फैक्ट्री भी उनकी हो जाए, फिर उन्हें अपने ड्रग कारोबार में कोई रुकावट नहीं होगी। जो भी तुम्हारी मदद करना चाहता था उन्हें या तो डरा दिया गया या रास्ते से हटा दिया गया। तुम्हें ऐसा फील करवाया गया कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब क्या होगा? अब मनाल चुप थी, उसका चेहरा सन्नाटे में डूबा था। उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं, क्या आदित्य सच बोल रहा है, क्या वो सिर्फ डर दिखा रहा है, क्या वाकई उस लीडर की नज़र मुझ पर थी, और अगर ये सब सच है तो आदित्य को ये सब कैसे पता चला? क्या आप मनाल आदित्य पर भरोसा करेगी या उसका शक और बढ़ जाएगा?